वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर।
रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
आत्मा मेरे दिल में आओ,
आत्मा मेरे दिल में आओ,
आकर अपना घर बनाओ,
आकर अपना घर बनाओ,
पावन आत्मा आओ,
पावन आत्मा आओ,
आत्मा मेरे दिल में आओ। आकर अपना दीप जलाओ,
आकर अपना दीप जलाओ,
पावन आत्मा आओ,
पावन आत्मा आओ,
आत्मा मेरे दिल में आओ। आकर अपनी शांति दे दो,
आकर अपनी शांति दे दो,
पावन आत्मा आओ,
पावन आत्मा आओ,
आत्मा मेरे दिल में आ।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अन्द्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
जाओ सारे विजयी बनूं, गाऊं तेरा गान, सुनाऊं तेरा नाम, कहां ले चल रहे हो नाथ, देखो छूट न जाए साथ, कहां ले चल रहे हो नाथ, देखो छूट न जाए साथ।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RV मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड एड्रेस है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित। श्रोताओं, देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का समापन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी। श्रोताओं, संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम मत होना सुखद है। श्रोताओं, इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 और केंद्र की सूची प्रविष्टि 56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भू जल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की 8वीं रिपोर्ट में जल प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। श्रोताओं, भाजपा तथा TRS के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। शिक्षा, बिजली एवं चिकित्सा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। उसी तर्ज पर पानी भी संविधान की समवर्ती सूची में आने से जल संकट से निपटने में आसानी होगी। आलोचकों के अनुसार पानी को केंद्र सरकार के दायरे में लाने से निजीकरण तथा बाजारवाद हावी होने की उम्मीद है, पर ऐसे खतरे तो पानी पर राज्य सरकार के नियंत्रण में ज्यादा हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी के साथ नदियां सुकुड़ रही हैं और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। देश में पानी 6,607 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 2,000 ब्लॉक्स में पानी के अत्यधिक शोषण से हालात गंभीर हो गए हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1/4 रह गई है। श्रोताओं, पिछले साल देश में लगभग 1,879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1,123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नजरिए की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। श्रोताओं, प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। श्रोताओं, सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। श्रोताओं, पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसमें पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्कसंगत मामला बनता है। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात की थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासनकाल में केएल राव ने 1972 में बनाई थी। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्त रूप देते हुए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बने हुए थे। श्रोताओं, जनहित याचिका में 10 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। श्रोताओं, क्रियान्वयन में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11,00,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है, और अब इसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रोताओं, पर्यावरण विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां हो रही हैं। श्रोताओं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है, अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है, वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों में ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। श्रोताओं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देश को 2050 तक जीडीपी में 6% तक की हानि हो सकती है। श्रोताओं, भारत में विश्व की 18% आबादी है, पर पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 2% वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 MH की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रोताओं, इससे 34,000 मेगावाट जल विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है। श्रोताओं, सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है, जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसलों को फायदा हो ना हो, पर दलों की चुनावी फसल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है, पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश को पानी और खुशहाली ले पाएगी। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।
दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।
राह मंजिल की तुमसे मिली,
तुमसे मैं।
खुशी।